ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटन रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में चल रहे 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया उत्सव के दूसरे दिन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पारिस्थितिकी तंत्र पर नदियों के प्रभाव को उजागर करने के उद्देश्य से IGNCA में 5वां नदी उत्सव आयोजित। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की गई और दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक के टाउन हॉल में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटन रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेल के माध्यम से पर्यटक भारत और नेपाल सीमा पर स्थित धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा शुरू किए गए इस यात्रा पैकेज में पर्यटक भारत और नेपाल के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। 10 दिन के सफर के दौरान यात्री भारत में अयोध्या, वाराणसी, सीतामढ़ी और नेपाल में जनकपुर, काठमांडू और पोखरा के धार्मिक स्थलों के साथ ही ऐतिहासिक स्थलों का दौरा कर सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा और उनके अनुभव को यादगार बनाने के लिए IRCTC के टूर मैनेजर भी इस यात्रा में यात्रियों के साथ रहेंगे। इस अनूठी पर्यटन पहल से भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों में और मजबूती आएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन अख्तर, आकाशवाणी दिल्ली।
राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया उत्सव के दूसरे दिन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए निरंतर सहयोग, नवाचार और प्रतिबद्धताओं का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने आगे कहा कि तेजी से हो रहे वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बढ़ती उपभोक्ता प्राथमिकताएं खाद्य प्रणालियों को नया रूप दे रही हैं। श्री नड्डा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार भी प्रदान किए। केरल को पहले, तमिलनाडु को दूसरे और जम्मू कश्मीर को तीसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। गुजरात को विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड FSSAI have been playing a pivotal role in developing standards, keeping in mind international trade, evolving food production processes and changing consumption patterns. FSSAI has made remarkable strides in reviewing and developing new standards based on cutting-edge advancements in food technology.
इस अवसर पर खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य नियामकों, अनुसंधान संगठनों और उपभोक्ता मामलों के विभागों के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री जोशी ने FSSAI की ईट राइट पहल की सराहना की। इस अवसर पर श्री नड्डा और श्री जोशी ने भारत के खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी पोर्टल FIRA सहित 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किए। दोनों मंत्रियों ने दूरदर्शन में बाजरा रेसिपी शो की भी शुरुआत की और 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 भी जारी किया। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करने से किसानों को मदद मिलने के साथ ही देश में रोजगार सृजन होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में भी मदद करेगा।
मुझे खुशी है इस बार जिस तरीके से अलग अलग देशों ने इस आयोजन में उत्साह अपना दिखाया, जिस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन रहा, भले वो वेरियस कंट्रीज हों, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री हों, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो इससे कंसर्न रही हैं, उन्होंने भी इसमें अपना मजबूत पार्टिसिपेशन उन्होंने दिया है। ऐसे में मैं ये मानता हूं फूड प्रोसेसिंग भारत का भविष्य है।
विश्व फूड इंडिया 2024 में हिस्सा ले रहे देशभर से खाद्य उत्पाद निर्माताओं ने आकाशवाणी से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए हैं।
मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से साइंटिस्ट हूं संजीव कुमार और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से बिलोंग करता हूं। हम लोग यहां पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि फूड को जैसे आप प्रिजर्व करते हो तो जनरली आप देखते हो केमिकल बेस्ड मेथड यूज किए जाते हैं और ये केमिकल्स जो है हार्मफुल भी होते हैं। आप देखोगे इन केस ऑफ स्पाइसेस हम लोग फ्यूमिगेंट्स यूज करते हैं जैसे मिथाइल ब्रोमाइड इथिलीन ऑक्साइड, तो ये जो केमिकल्स हैं ये हार्मफुल इफेक्ट देते हैं और इसको कि कई कंट्री ने बैन किया हुआ है। इसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव मेथड की जरूरत होती है। एज अल्टरनेटिव मेथड विकिरण का यूज किया जा सकता है जैसे गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन से हम लोग लार्ज स्केल में फूड को जो है विकिरण से ट्रीट कर सकते हैं और इससे हमें जितनी भी समस्याएं हैं जैसे आप स्प्राउटिंग इनहिबिशन जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है अनियन पोटैटो में वो हमें मिलता है, सीरियल्स एंड पल्सेस में इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और स्पाइसेस में जिसमें माइक्रोब का भी प्रॉब्लम आता है इंसेक्ट का भी प्रॉब्लम आता है, ये दोनों प्रॉब्लम को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। राजधानी के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पांचवां नदी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संस्कृति, भूगोल, परंपराओं, शिल्प और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर नदियों के प्रभाव को उजागर करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय उत्सव का विषय रिवर्स एंड रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन है। भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाते हुए नदी उत्सव 2024 में पहले दिन एक राष्ट्रीय संगोष्ठी और उसके बाद एक वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में नावों का एक आकर्षक प्रदर्शन, कांगसाबटी नदी पर एक फोटो प्रदर्शनी, मटका पेंटिंग के साथ साथ छोटे बच्चों की पेंटिंगों की प्रदर्शनियां भी शामिल है। इस नदी उत्सव के तहत विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए इंटरैक्टिव कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है एवं आगंतुकों के लिए नदियों के महत्व को उजागर करने के लिए कई लघु फिल्में और गीत भी दिखाए जा रहे हैं। यह नदी उत्सव IGNCA भवन में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मनाया जा रहा है जिसमें जनता के लिए निःशुल्क प्रवेश है और इसकी समाप्ति कल होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए इशिका रंजन के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के एक बयान के विरोध में आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया। इस दौरान श्री सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म करने वाला बयान अनुचित है। श्री सचदेवा ने कहा कि श्री गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर आज पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार है। श्री राय ने बताया कि इस प्लान में 21 बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्लान की योजना 27 सितम्बर को की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज शाहबाद में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुभाष कलसाना के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री सैनी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आलोचना करते हुए कहा कि उनके 56 दिन का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 वर्ष के कार्यकाल से अच्छा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। श्री सैनी ने कहा कि बारिश कम होने के कारण किसानों को आर्थिक राहत के रूप में उनकी सरकार ने 2000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य में 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। रैली में भाजपा के कई पदाधिकारी और सांसद नवीन जिंदल भी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एनडीए सरकार देश में निष्पादन, जवाबदेही और अंतिम छोर तक डिलीवरी की राजनीति लेकर आई है। अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है, भले ही वे किसी भी सामाजिक वर्ग के हों या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। श्री नड्डा ने कहा कि योजना का लक्ष्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रूपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि विस्तारित योजना अगले महीने लागू की जाएगी। श्री नड्डा ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि टीकाकरण सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए विकसित यू विन पोर्टल का उल्लेख भी किया। ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण रिकॉर्ड प्रदान करता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब एक छोटा और अधिक प्रभावी उपचार उपलब्ध है, जिससे उपचार की अवधि 9 से 12 महीने से घटकर 6 महीने हो जाती है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में आपदाओं या स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान त्वरित तैनाती के लिए 25 एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भीष्म क्यूब्स स्थापित किए जाएंगे। इन पोर्टेबल मॉड्यूलर सुविधाओं को ऐसी स्थितियों में जीवन रक्षक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र दृश्य श्रव्य और मनोरंजन क्षेत्र के लिए कौशल की आवश्यकता को प्रोत्साहन देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को स्वीकृति दी थी। उन्होंने फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों और दृश्य श्रव्य तथा मनोरंजन उद्योग के साथ बैठक की। श्री जाजू ने कहा कि यह निर्णय देश में भविष्य की ऑडियो विजुअल गेमिंग कॉमिक्स AVGC कंपनियों को प्रोत्साहन देता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे वैश्विक AVGC में देश की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 स्थानीय सामग्री को पूरी दुनिया में पहुंचाने में सहायता करेगा।
Waves, the World Audio Visual and Entertainment Summit that we plan to hold in New Delhi starting from 5th of February. And also we wanted to talk to them about the International Film Festival of India being held in Goa from 20th November. I have solicited participation from the members of the industry.
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज चारों पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए डूसू के लिए नियुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 8, उपाध्यक्ष पद के लिए 5, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए 4-4 उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव इस महीने की 27 तारीख को होगा। छात्र 2 पालियों में सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7:30 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतों की गिनती 28 सितंबर को होगी। दिल्ली नगर निगम MCD ने चांदनी चौक के टाउन हॉल में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया। शाहदरा उत्तरी जोन में भी आज स्वच्छता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और संगीत के साथ साथ भोजन का भी लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भोजन और संगीत उत्सव के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के महत्व के बारे में नागरिकों को जागरूक करना है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री रह सकता है और आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में चल रहे 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया उत्सव में दूसरे दिन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पारिस्थितिकी तंत्र पर नदियों के प्रभाव को उजागर करने के उद्देश्य से IGNCA में 5वां नदी उत्सव आयोजित। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की गई। और दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक के टाउन हॉल में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।